संबंध। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब उसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करने का हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्यों देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध धर्मात्मा ही था, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आ गया था जो कि आगंतुक था। अब इस अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है, केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था, संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए भी मनुष्य मुझको केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये बात तो ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है, संसार की आसक्ति के कारण उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहां संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं। कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर, परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वो धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात, यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे अर्थात मैं धर्मात्मा हूं ऐसे अपनी अहंता को बदल दे तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है तब वह कामात्मा बन जाता है, और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो कि वास्तव में है तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है, चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, मानो मैं सत्य बोलने वाला हूं ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है तब वह सत्य बोलता है, और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूं ऐसी अहंता को पकड़ करके ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके अनुसार वैसे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होता है वैसा ही कर्तापन दृढ़ होता है। ऐसे ही यहां दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूं संसार का नहीं हूं यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचन मात्र कमी रहने पर भी वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार्य कहकर आए और फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा। इसका समाधान यह है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही तो होगा। अतः सदाचारी को हो या धर्मात्मा को एक ही बात है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर तो भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह भी है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है धर्मात्मा होने से, अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी ये प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंग जननी को संतनु सुतन कहाऊं, जो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त की माने भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तोसि मे सखा चेति कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और दूसरा तो तोड़ ही कौन सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलती। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सन्मुख हो जाता है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना ही नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सन्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना ही कैसी रही, नहीं रह सकती। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं हो सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं, दोनों ही सिद्ध होते हैं। परिशिष्ट भाव, जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से ही मेरी यह दुर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता है। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वो भगवान निष्ठ होता है, उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यह शंका हो सकती है कि अगर भगवान के भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि 58वें श्लोक में कहा, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा, जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोऽसि मे सखा चेति 4वें अध्याय के 3रे श्लोक में। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारा न श्रोष्यसि, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, 9 का 22। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे, इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2रे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, येन्ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावा दविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना द्रितयुष्मदंघ्रयः। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा नते मा धवताव कह क्वचित भ्रश्यंती मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि पमूर्धसु प्रभो। परंतु भगवन, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। हे प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। इधर रामचरितमानस में भी भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, ये ज्ञान मान बिमत तव बब हरनि भक्ति न आदरे ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत्व हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम हे। ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, बाध्यमानोपि मद भक्तो विषय रजितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बनने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आता है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। रामचरितमानस के बालकांड में आया है, सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। कौनते यह प्रतिजानी, भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करके कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते, भक्ति भगवान की कमजोरी है। इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद 4था अध्याय 63वां श्लोक, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय है, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौनते यह प्रतिजानी नमी भक्त प्रणश्यति, इन पदों से साधक को ये दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूं।